ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीयरेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टके। ग्रंथराशि श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म। अथ अनया अपि न भवतः विजया उर्वार भरया समुचिता अर्था इह उपलभामहे। अथानयापि न भवत इज्जयोरुभार भरया समुचितम अर्था इहोपलभामहे। अथानयापि न भवत इज्जयोरुभार भरया समुचितम अर्था इहोपलभामहे। इज्जयोरुभार भरया समुचितम अर्था माता जी शब्दार्थ अथ अन्यथा अनया यह अपि भी ना नहीं भवतः आपका इज्जया यज्ञ द्वारा उरुभार भरया तमाम सामग्री के भार से बोझिल समुचितम वांछित आवश्यक अर्थम उपयोग इह यहाँ उपलभामहे। हम देखते हैं। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रील रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि बिना भूख के किसी के सामने ढेर सारा भोजन रख दिया जाए तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता। बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठानों में भगवान को तुष्ट करने के लिए अनेक वस्तुएं एकत्र की जाती हैं, किंतु यदि ईश्वर के प्रति लगाव या प्रेम नहीं है तो यह सारा आयोजन निरर्थक है। ईश्वर स्वयं में पूर्ण है और उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि हम उन्हें थोड़ा जल, एक फूल तथा एक तुलसी दल भेंट कर दें तो वे इन्हें स्वीकार कर लेंगे। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन भक्ति है। बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। पुरोहितों को यह सोचकर विषाद हो रहा था कि वे भक्ति के पथ पर नहीं हैं और ईश्वर उनके यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीतम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अथा नयापि न भवत इज्जयोरु भार भरया समुचितम अर्थम इहोपलभा महे। हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सर्वप्रथम सभी वैष्णव जो यहाँ ब्रजवासी हैं के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऐसी शक्ति दें कि थोड़ा हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार प्रामाणिक शब्द भगवान कृष्ण उनकी भक्ति के विषय में वर्णन कर सकूं। तो हम लोग ये श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंध तीसरे अध्याय के श्लोकों का रसास्वादन कर रहे हैं। महाराजा नाभि ने यज्ञ करा करके भगवान का दर्शन किए, पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ है। जब भगवान साक्षात प्रकट हो गए तो जो यज्ञ करने वाले ऋत्विज लोग थे, सर्वप्रथम जो स्वयं यज्ञ कर रहे थे वो प्रार्थना करने लगे। अपनी प्रार्थना में आज के श्लोक में कहते हैं अथापि अनयापि न भवतः इज्ज उर्भार भरया। कहते हैं भगवान आपकी, हम लोग जानते हैं, हम लोग ने किया है कि आपके यज्ञ में कितने सामग्रियां इकट्ठा किया, बहुत ऐश्वर्यमयी ढंग से यज्ञ किए, आपकी पूजा किया, लेकिन हम लोग को ज्ञान है कि आप ये इतने अपुलेंस इतने यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते हैं आज का, और इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर कार्य का उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि। यदि भगवान संतुष्ट ही न हो तो इतना खर्च, इतना कार्य, इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उद्देश्य है, श्रीमद् भागवतम का मत है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक में समझाते हैं, और श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का उदाहरण देते हुए श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो स्वयं में संतुष्ट है, जिसे भूख लगी नहीं है, स्वयं में संतुष्ट है, तो उसके समक्ष कितना भी सामग्री रख दिया जाए, कितने प्रकार के पकवान बना के रख दिया जाए, तो उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, वो संतुष्ट नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है, भगवान भौतिक प्रबंध के द्वारा संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए इस श्लोक का और प्रभुपाद जी के तात्पर्य का सारांश यह है, यदि भगवान को संतुष्ट करना है तो भक्ति चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति प्रेम से संतुष्ट होता है और भक्ति का फल प्रेम है। तो जब तक व्यक्ति प्रेम के स्तर पर प्रेम पूर्वक, लविंग डिवोशन, प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता है तो भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता है। हालांकि हम सभी लोग भगवान उसी रास्ते के पथिक हैं, पर इस रास्ते का उद्देश्य है प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या बिना से आते। जब हम प्रेम पूर्वक प्रेम के स्तर पर भक्ति करते हैं, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्त समय सिंधु में वर्णन किया है, किस प्रकार से हम भक्ति करते हुए प्रेम के स्तर पर जो भक्ति का फल है पहुंच सकते हैं, तभी हमारी संपूर्ण अविद्याओं का नाश होता है। जब हम अविद्याओं का नाश होता है तो हम अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं और भगवान के साथ हमारा एक शाश्वत संबंध हो जाता है। उस संबंध का फल भगवान और भक्त दोनों रसा स्वादन करते हैं, तभी भगवान संतुष्ट होते हैं। और कितना भी आर्य, सभी आचार्य, जितने भी आचार्य हुए, जितने भी महान भक्त हुए, सबका रियलाइजेशन यही है। सबका, सभी आचार्य, शिल रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु के अपने ग्रंथ में लिखते हैं, भक्त की उच्च कोटि का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कहते हैं, कृत्वा हरि भक्त प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम बस भक्ति बसी करोति कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी चा। कहते हैं कि जो भक्ति है इतनी महान है, इस संसार में भगवान की इच्छा मात्र से पूरे 33 करोड़ देवी देव सभी लोग भगवान के बस में हैं, भगवान की इच्छा से सब लोग बस में हैं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, अनंत शक्तियां हैं, सब अपने बस में, कंट्रोल में, ब्रह्मा से लेकर सम तक। और भगवान कृष्ण की इच्छा मात्र से ब्रह्मा, महादेव, शिव, जितने भी इंद्र, चंद्र, दिव्य देवता लोग उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कार्य कर रहे हैं। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हें तो सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, हे नंद बाबा के लाला, आप ईश्वरों के भी ईश्वर हो, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, केवल आपकी इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं, महादेव शिव विनाश करते हैं। तो भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, अपन इच्छा हो तो नहीं, हर इच्छा बलवान। तो लेकिन इतने स्वतंत्र हैं, पर ये भगवान की भगवत्ता की चरम सीमा है, स्वतंत्र होते हुए परतंत्र हैं। ये भगवान की भगवत्ता की चरम सीमा है, इतने स्वतंत्र भगवान हैं लेकिन फिर भी वो परतंत्र हैं, यही उनकी भगवत्ता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति बसी करोत कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, भक्ति भगवान कृष्ण को वश में कर लेती है। इस संसार में हम देखते हैं हर व्यक्ति योगिक सिद्धियों के वश में है, चमत्कार। कहीं योगी कोई, अभी जैसे हम लोग यहाँ भागवत श्रवण कर रहे हैं, कोई भी योगी अगर बाहर आकर के उड़ने लगे अपनी योग सिद्ध से, सब लोग हाल के बाहर से निकल के जाके देखने लगेंगे, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, रेडियो में आ जाएगा, टेलीविजन, कितना आकर्षक है इस भौतिक जगत में। श्री चैतन्य चरितामृतम में श्री रूप गोस्वामी शिक्षा में वहां वर्णन है, रिद्धा सिद्धि बज बजयता सत्य धर्मा समाधि। कहते हैं कि रिद्धा सिद्धि ब्रज जो सिद्धियों का समूह है, जो पूरे संसार में हर व्यक्तियों को, ज्ञानियों को, योगियों को, सबको, कर्मियों को, ये सिद्धियां सबको बस में कर लेती है। और सत्य धर्म समाधि, जो सत्य गुण ब्राह्मण के, ब्राह्मणों का जो गुण है सत्य समा दम, ये गुण जो है बहुत आकर्षक है। और इससे भी महान आकर्षक है ब्रह्मांडोप्य गुरु रूप चमत्कार ये वतावत। कहते हैं कि जो ब्रह्म से एक होने का सुख है, इन सभी सुखों से महान है, इन सभी सुखों से महान है, बहुत चमत्कार। ये तब तक ही महान है जब तब तक इसमें चमत्कार है, यावद मद रूपी प्रेम नाम बसी करा सिद्ध औषधि नाम। कहते हैं जब तक मधुरूप, मधु के शत्रु उनके रिपु भगवान कृष्ण की प्रेम पूर्वक जो औषधि, जो सुगंध है, जिसने उसका स्वाद नहीं लिया है, जिसने ये भक्ति रूपी रस का स्वाद लिया है, भौतिक जगत का जो सबसे महान सुख है योगिक सिद्धियां, ब्राह्मणों का गुण, सत्य दमस, सत्यवादी, अगर आप ढूंढते रह जाए कोई सत्यवादी नहीं मिलेगा। और हर व्यक्ति एक सत्य, एक अपुलेंस है, ऐश्वर्य है, हर आदमी को चाहिए कि सत्य बोले, लेकिन नहीं मिलेगा। अगर कोई बोलता है वो भी सब उसकी पूजा करेंगे। और उससे भी महान है ब्रह्मांड भगवान से एक होने का सुख। तो कहते हैं ये चमत्कार इसमें तब तक ही है जब उसने भगवान के प्रेम रस का रसास्वादन नहीं किया है। और जो ही व्यक्ति भगवान की भक्ति की सेवा का रसास्वादन करता है, ये सब तुच्छ है, तुच्छ है। तृणाप दब समुद्र, ये तृण के समान है, ये तृण के समान है। इसलिए भक्त जो उच्च कोट के भक्त हैं, जैसे हमारे गोस्वामीगण के जीवन चरित्र में देखते हैं कि उन स्वाभाविक वैराग्य, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। क्यों? कि भक्ति के सुख का रसास्वादन, यही कहने का उद्देश्य है। तो भक्ति इतनी महान है, वो सबको बस में करती है। जब भगवान स्वयं भक्ति के बस में होते हैं, और भक्ति ही ऐसी है कि न साधत माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव। कहते हैं कि यथा भक्ति ममोर्जित है, स्वाध्याय तपह त्याग यथा भक्ति ममोर्जित है। 11वें स्कंद में वर्णन है, स्वयं कहते हैं कि हे उद्धव जी, ये संसार में न सांख्य योग मुझे बस में नहीं कर सकता है, मुझे बसीभूत नहीं कर सकता है, कोई प्रकार का योगिक सिद्धियां भी मुझे बसीभूत नहीं कर सकती, किसी प्रकार की तपस्या भी मुझे बस में नहीं कर। यहाँ की तपस्या एक ऐश्वर्य है, हर आदमी तपस्या, जब आप देखते हैं बहुत यहाँ संसार में ऐसे बहुत धर्म फैले हुए, लोग केवल सन्यास धर्म का अच्छा से पालन करें तो लोग हजारों हजारों लाखों लाखों लोग आकर्षित होते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, एक तपस्या है। लेकिन भगवान को तपस्या भी बसीभूत नहीं कर, यथा भक्ति ममोर्जित है, यथा जैसे भक्ति उनको बस में करते। भक्त्या हम एकया ग्राह्यम, भक्ति केवल अकेला ही भक्ति भगवान को संतुष्ट कर सकती है। भक्त्या हम अकेले ग्रह केवल, और कैसी श्रद्धान्विता प्रिय सताम, जो हम श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा का अर्थ है भक्तों के, परम भक्तों गुरुदेव के शब्दों में श्रद्धा, तो उनके आदेश के
के अनुसार, आदेश श्रद्धा का अर्थ है उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन चलाना, तभी भक्ति प्रारंभ होती है। भक्ति इतना आसान नहीं है, भक्ति इतनी आसान नहीं है। मैं कहा करता हूं भक्ति प्रारंभ करना आसान है, पर भक्ति पूरा करना लोहे का चना चबाना है, इतना आसान नहीं है। अब भक्ति आसान बन जाती है जब हम भक्त के शब्द को अपनी आत्मा समझते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करी आज्ञ, आरा न करी मने आशा। जब हम इस श्लोक को आत्मसात करते हैं, उस प्रकार की शरणागति आती है, तभी भक्ति आसान हो जाती है, बहुत आसान। नहीं तो भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, और दुर्लभ होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भक्ति जिसे बड़े बड़े देवी देवता भी बस में नहीं कर सकते हैं, ये भक्ति भगवान को बस में करके राजन गुरुलनम, ये श्रीमद् भागवतम वर्णन है, नारद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि आप भगवान को, आपकी भक्ति ने आप भगवान कृष्ण को बस में कर लिया। ये भगवान साधारण नहीं, इनका नाम मुक्ति है, मुकुंद है, मुक्ति मुकुंद है, मुक्ति दाते हर चित्त की तुझे भक्ति भाजम, मुकुंद है। मुक्ति आसानी से बहुत सरलता से दे देते हैं, लेकिन भक्ति सरलता से नहीं देते हैं। आपके आपका ऐश्वर्य देख करके, आपका राजपाट देख करके, ये जितने आपके राजमहल में ऋषि महर्षि आते हैं, ये देख के नहीं आते हैं, क्योंकि आपने मुकुंद को बस में कर लिया है अपनी भक्ति के द्वारा, इसलिए मुकुंद आते हैं। और आपकी भक्ति से वो दूत बने, आपके गुरु बने, अर्जुन को शिक्षा दिया भगवद गीता का, उनका रथ चलाए, ड्राइवर बने, सारथी बने, द्रौपदी की एक ही पुकार पर खुले पैर दौड़ करके रक्षा किया। अब क्या गुण था, जैसे जब भगवान, हम उदाहरण के लिए भगवान हम देखते हैं कि जब महाराजा युधिष्ठिर महाराज के दूत बन करके हस्तिनापुर आए, तो अर्जुन दुर्योधन ने 56 व्यंजन बनवाए, उस कोई प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान को संतुष्ट नहीं कर सका, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं थी। भगवान को ज्ञान संतुष्ट नहीं कर सकता है, तपस्या नहीं कर संतुष्ट कर सकता है, योग केवल भक्ति। तो दुर्योधन में भक्ति नहीं थी, राजा था पर भक्ति नहीं थी, लेकिन विदुर महाराज में भक्ति थी, इसलिए जाकर के वहां साग खाए, केले का छिलका खाए और संतुष्ट हुए, क्योंकि ये मैं भक्त्या प्रयच्छति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बड़े हमारे हलवा पूड़ी 56 व्यंजन के भूखे नहीं है, भक्ति के भूखे हैं, जो भक्ति से भोग लगाता है, अफर करता है, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। और आसान नहीं है, क्योंकि भौतिक व्यक्ति का माइंड, वो मन जो है, वो खुद को संतुष्ट करना चाहता है, खुद को संतुष्ट करना चाहना। ये पढ़ना, लेक्चर देना, प्रचार करना भी आसान है, लेकिन अपने मन को भौतिक भावना से मुक्त करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और जब तक मन भौतिक भावना से मुक्त नहीं होगा, भक्ति प्रकट नहीं हो सकती है। भुक्ति मुक्ति स्पृहयावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखद जाता कथम अभ्युदयो भवेत। श्री रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु में वर्णन करते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों की इच्छा, स्पृहा इच्छा, केवल मान लीजिए कोई भक्ति कोशिश कर रहा है, हर चीज कर रहा है, या उसकी इच्छा है हृदय में, तो भी वो भक्ति के मार्ग पर सरलता पूर्वक नहीं सक सकता। अतः कृष्ण चरणम भोजे सेवा निवृत्त चेष्टा, भगवान का चरण जो है, चरणों की सेवा, इतना चरणों की सेवा में इतनी मधुरिमा है, इतना स्वाद है, एक बार जब लग जाए तो व्यक्ति कैसे भौतिक भोग की तरफ देखेगा, वो थूकेगा, यमुनाचार्य कहते हैं कि वो थूकेगा यदि अवधि बत नारी संबंध असमरय माने, जैसे भोग की भावना आते ही उसको घृणा होगी, वो खुद पर पश्चाताप करेगा, हम कैसे इस भौतिक भौतिक सुख के तुच्छ सुख में फंसे थे, क्यों कभी वो पश्चाताप करेगा, कभी प्लान नहीं करेगा, वो एटलीस्ट वो प्लान नहीं करेगा, मान लो भौतिक भावना से ग्रसित है फिर भी वो प्लान नहीं करेगा, क्योंकि वो भक्ति का सुख ले रहा है, जप का सुख ले रहा है, सेवा का रस ससुराम का सुख ले रहा है। तो जब तक हम लोग इस स्तर पर नहीं आते हैं तब तक भक्ति में हम लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। तो हर भक्त का उद्देश्य होना चाहिए कि इस स्तर पर आना, और इस स्तर पर लाने के लिए ही श्री रूप गोस्वामी ने, जैसे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, रूप गोस्वामी का उदाहरण देते हैं, इस स्तर पर लाने के लिए ही रूप गोस्वामी ने भक्तसम सिंधु का, दूसरे ग्रंथों का की रचना किया है। यदि हम लोग उस ग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं, रूप गोस्वामी के रास्ते का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी हम लोग भक्ति के रास्ते पर नहीं। रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकृति, जब तक हम लोग रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण चिन्हों पर भक्ति नहीं करेंगे असंभव है, बहुत मुश्किल है। और अंतर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसी भक्ति को, इसी ग्रंथ को लेकर के अमेरिका गए, पूरे विश्व में प्रचार किया सेम भक्ति देने के लिए, जो भक्ति देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है, भक्ति एक वैराग्य विद्या है, वैराग्यम बिना न शोभते, वैराग्य के बगैर भक्ति की शोभा नहीं होती है। तो यही भक्ति जिसकी शोभा वैराग्य है, वही भक्ति सिखाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट सीधा अपने शिष्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भक्ति की शिक्षा दी इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट पर, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से कहते हैं, सुचि सद भक्ति दीपदाग्नि दग्ध जगजाति कर्म से, कहते हैं ये जो भक्ति है सुचि सद भक्ति दीपदा, सत भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, जिस भक्ति से जो डॉग ईटर हैं कुत्ता खाने वाला व्यक्ति में संपूर्ण ब्राह्मणों और वैष्णों का गुण उत्पन्न करा देती है, ऐसी भक्ति दग्ध दुर्जात कलमस है, संपूर्ण कलमस को जलाकर राख कर देती है। हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कि ये भक्ति जो है हमारे कितने कितने पहाड़ यथा अग्नि सुसमधार्चित करो तो ये शांत उद्धव है। कहते हैं कि जैसे हिमालय पहाड़ जैसे घास फूस को एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी जो है जला के राख भूख कर देती है, उसी प्रकार से बिगिनिंग भक्ति की शुरुआत ही हमारे संपूर्ण पापों को, संपूर्ण अनर्थों को, सबको जला के नष्ट कर देती है। पर निर्भर है हम कितने प्रामाणिक रूप से भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, निर्भर यह है। लगता है सभी को लगता है कि हम भक्ति के रास्ते पे हैं, जैसे हम कभी हाईवे से जाते हैं तो हाईवे से जब हम चलते हैं हाईवे पर तो कितने ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं निकलती हैं दूसरे रोड, वो भी अच्छी रोड है, उसमें भी पोर्ट होल्स नहीं है, वो उसमें भी गाड़ी 100 की स्पीड पे जाती है, 120 की स्पीड पे जा सकती है, लेकिन पता नहीं चलता। जो ही हम अपने आचार्य हमारे फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो हम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आचार्यों के रास्ता को सरल रूप में हमको प्रदान किया, तो जो ही हम उनके बताए हुए रास्तों में थोड़ा सा अलग चलते हैं तो पता नहीं चलता है, वो लचलता है कि ये भी अच्छा रास्ता है, हम भी 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, पता नहीं चलता। ये पता चलता है जब हम हमेशा साधु शास्त्र गुरु वक्य चित्त ते करी अक्य, जब हम साधु जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, साधु शास्त्रों में जो वर्णन है साधु का चरित्र, वर्तमान समय में सेम साधु जो अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करने के बाद पूर्णता के स्तर पर भक्ति कर रहे हैं, जब उनके मार्गदर्शन में, ऐसे साधुओं के मार्गदर्शन में हम भक्ति करेंगे तो निश्चित ही है हम रास्ते से हट नहीं सकते, क्योंकि भक्ति का परिणाम निश्चित है। इस संसार में कोई वस्तु का परिणाम निश्चित नहीं है, केवल भक्ति का परिणाम निश्चित है। दो परिणाम नहीं है, निश्चित है। दो परिणाम है तो भक्ति का लोग गौण परिणाम ले रहे हैं, जो मुख्य परिणाम है वो भक्ति का परिणाम उन्हें पता नहीं है। भक्ति का परिणाम यही है प्रेम, परम पुरुषार्थ, दूसरा परिणाम है नहीं। संपूर्ण शास्त्रों और आचार्यों का यही मत है, यही अगर यदि हम, और ये परिणाम कैसे पता चलता है कि जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्यात् तिन एक काल है, जब यह भक्ति हम प्रारंभ करेंगे तो भौतिकता का जो आनंद है हमको फीकना लगेगा, जो पहले जिसमें हमको आनंद लेते थे आनंद, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऋत्विक लोग हैं वो भी खुद ही, जब उनका प्रोफेशन है यज्ञ करना, प्रोफेशन है, और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आप संतुष्ट नहीं होते, इससे आप संतुष्ट नहीं होते, वो स्वयं वो लोग महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम लोग जब भक्ति प्रारंभ करते हैं, जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं जो ही भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारे अनर्थ क्लेश अग्नि, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं जैसे हम लोग भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारे संपूर्ण दुख दुख अग्नि पाप से जो दुख होते हैं नष्ट होते हैं, क्योंकि जैसे हमने वर्णन किया कि भक्ति तो संपूर्ण हिमालय जैसे पहाड़ पाप को जला के राख कर देती है, वो जब नष्ट होता है तो जीवन शुभ ही होता है, इसलिए भक्ति को शुभदा कहा गया। भक्ति में कौन सा गुण नहीं है, हम लोग भक्ति की महिमा को नहीं सुनते हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री प्रभुपाद जी और आचार्यों के शब्दों से यदि भक्ति की महिमा को व्यक्ति सुना जाए, जैसे वर्णन है कि दूसरे जितने भी रास्ते हैं, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, सब तुच्छ है। इस संसार में हम देखेंगे, संसार में वर्तमान समय में भी देख सकते हैं और श्रीमद्भागवतम के श्लोकों में भी देख सकते हैं कि सभी बड़े बड़े से ज्ञानी लोग अपने ज्ञानी को तिलांजल दिया, त्याग किया, क्योंकि भक्ति की का रसा स्वादन करके। सिपा सुखदेव गोस्वामी ज्ञान का तिलांजल दिया, चतुर कुमार, कितने भी आप भागवतम मिलेंगे, शास्त्रों मिलेंगे, लेकिन भक्ति से कोई वैराग्य नहीं लेता है, वैराग्य भक्ति से नहीं होता है। इस भौतिक जगत के वैराग्य के बाद भक्ति प्रारंभ होती है। जब भौतिक जगत के सुखों से हम वैराग्य लेते हैं तभी भक्ति प्रारंभ होती है, प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए यहां जो वर्णन है कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन भक्ति है, एकमात्र साधन भक्ति है। बड़े से बड़े यज्ञों के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। पुरोहितों का यह सोचकर विषाद हो रहा था कि वे भक्ति के पथ पर नहीं हैं, ईश्वर उनके यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। एकमात्र भक्ति है, बहुत सुंदर ढंग से प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद्भागवतम के सातवें स्कंध में, उदाहरण मिलता है जब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को वध कर दिया, प्रहलाद महाराज की रक्षा किया, बहुत क्रोध में थे, जितने भी देवी देवता लोग थे वहाँ, ब्रह्मा थे, शिव थे, सभी लक्ष्मी भी, सभी लोग थे, सब भयभीत थे, कोई जा नहीं रहे थे। तो प्रहलाद महाराज को कहते हैं आप जाइए संतुष्ट करिए। तो प्रहलाद महाराज सोचने लगते हैं वहां बहुत सुंदर बना है कि यहां तो कितने देव ब्रह्मा दयो सुर गया मुनयो प्रसिद्धा। कहते मैं देखता हूं यहां ब्रह्मा है सिद्ध पुरुष भी हैं मुनि लोग भी हैं और ये सब उनके मुख से श्लोकों की धारा बहती है। ये लोग भी इनको संतुष्ट नहीं कर सके। अरे मैं कैसे संतुष्ट करूंगा हरि उग्र जातम, मैं तो असुर परिवार में जन्म लिया, मैं कैसे इनको संतुष्ट कर सकता हूं कैसे। ये भक्त की नम्रता है। फिर कहते हैं कि आज मुझे पता चला धनाभिजन रूप सुतः। कहते हैं आज पता चला कि जो भगवान है धन से तेज से बल से किसी के पुरुषार्थ से योग से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। भक्त्यातुतोष भगवान गज युद्ध पाय। कहते हैं भगवान तो केवल भक्ति से हाथी वो हाथी गजेंद्र कौन कितनी तपस्या किया था कितना श्लोक बोलता कहां वेद पाठ किया था केवल भक्ति थी भक्ति से संतुष्ट हुए। और सबरी भीलन थी वो कौन कितना वेद उसको आता था भगवान राम ने उसकी जूठन खाया जूठ बेर खाए कितना थे। और भक्ति से ही भगवान ने अर्जुन के सारथी बने भक्ति से ही गोपियां उनको हमेशा नचाती थी बस में करती थी सभी। तो उनके पास कहां इतना ज्ञान था क्या था संपूर्ण ढंग से अगर हम लोग उदाहरण देखें केवल भक्ति ही भगवान को संतुष्ट करती और यही भक्ति का संतुष्ट करने वाली भक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने आकर के प्रचार किया। जो ब्रज भक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया और वही चैतन्य महाप्रभु जो प्रचार किया रूप गोस्वामी को वही बताए इसमें बहुत सिस्टमेटिक भक्ति का वर्णन किया किस प्रकार से ABCD वाले का ख ग जो है जिसको कुछ आता नहीं है वो व्यक्ति ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की भक्ति कर सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षा के आधार पर और बहुत सरल ढंग से वर्णन करते हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। कहते जैसे यहां सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति में एक अधिकार किसका है जिसमें श्रद्धा है और श्रद्धा का अर्थ है कि श्रद्धा का अर्थ है उन भगवान के भक्तों में श्रद्धा। हम लोग देखते हैं प्रचार के दौरान कितने लोग मंदिर में 10 साल 15 साल 20 साल से आते हैं लेकिन कभी वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते माला जप नहीं कितने आते हैं श्रद्धा है भगवान में क्योंकि भक्त में श्रद्धा नहीं है। लेकिन देखते हैं कि लोग आते हैं तुरंत आना चालू करते हैं एक वीक में दो वीक में तुरंत ही प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक खरीद के पढ़ने लगते हैं जो प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं अनुयायी हैं उनसे मिलते हैं उनके उनमें श्रद्धा हो जाती है। तो जब हम भक्त में श्रद्धा करते हैं भक्त के साथ श्रद्धा हो जाती है वहां से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और हम लोग अध्ययन करें तो किसी न किसी की भक्ति किसी के भक्त किसी भक्त ने ही पैदा किया है चाहे प्रभुपाद जी का पुस्तक दे करके चाहे हरनाम दे करके चाहे प्रसाद का वितरण करके। तो इस प्रकार के जो वर्तमान भक्त चाहिए जो वर्तमान समय में जो भक्त भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं उसमें श्रद्धा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रभुपाद की दी हुई भक्ति का वही प्रचार कर रहे हैं वही प्रचार कर रहे हैं। तो जब हम उनमें श्रद्धा इस प्रकार से उत्पन्न होती है तो संबंध होता है एक मित्रता का संबंध प्रारंभ हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि हम प्रोसेस में लग जाते हैं मंदिर आते हैं जाते हैं तो आदो श्रद्धा तथा साधु संघ इसको साधु संघ कहते हैं। और साधु संघ से भक्ति बढ़ा नहीं करना पड़ता है स्वाभाविक रूप से चल जाए। साधु एक जीव को भक्ति में लगा देता है ये सेवा करो ये फूल ला दो ये माला बना दो ये सफाई कर दो ये सब भक्ति के अंग हैं। और ये अंग आप पढ़ेंगे भक्ति में सिंधु में इस अंग का हर अंग का एक फल दिया गया है। ज्ञान नहीं है चरणामृत लेने का क्या फल है परिक्रमा का क्या फल है साधु को प्रणाम करने का क्या फल है। लेकिन एक भक्त से संबंध है तो भक्त प्रणाम करता है साथ में प्रणाम हो जाता है। तो भक्ति ज्ञान का इंतजार नहीं करती है कि सो ज्ञान हो जाए तब मैं फल दूंगा, आगे नहीं सोचती है कि ज्ञान है बच्चा को अज्ञान है तो मैं न जलाऊं, वो जला देती है। उसी प्रकार से भक्ति के अंग में किसी न किसी ढंग से हम लगते हैं, उसको पालन करते हैं, उसका फल मिलना चालू हो जाता है। और जैसे फल मिलने का अर्थ है अनर्थ निवृत्ति स्यात्, हम हमारे जो भक्ति में जो रोड़ा है, जो अनर्थ है, जो हमारे भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, हो सकता है भौतिक जगत के लिए बहुत उपयोगी हो, वो धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं, वो दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे वो दूर हो गए, हम धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ती है, फिर निष्ठा बढ़ती, धीरे धीरे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है ये बिगिनिंग है, ये प्रारंभ है। तो ये प्रारंभ की भक्ति साधारण भक्ति नहीं है। कभी भी हम लोग को, जैसे हमने पहले भक्ति की महिमा का वर्णन किया रूप गोस्वामी शब्दों के अनुसार, वो प्रेम भक्ति की महिमा का वर्णन किया, तो हम लोग को हाथों उत्साहित नहीं होना चाहिए कि अभी ये तो भक्ति महान है, हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे। नहीं, क्योंकि हमारे आचार्य ने जो दिया है, और ऐसे जब उच्च कोटि के भक्त हैं वो तो हमेशा सोचते हैं कि हमारा साधन भजन अच्छा नहीं हो रहा है, वो कभी ऐसे पोज नहीं करते हैं कि हम बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वो हमेशा कनिष्ठ अधिकारी जैसे ही बर्ताव करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस प्रकार से कोई उनके एक्शन में कार्य सेवा करने के ढंग में भेद होता है, लेकिन ऐसे भेद नहीं होता है, ऐसे डिवीजन नहीं होता है। लेकिन जो भक्ति के अधिकारी हैं, भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं उनकी निष्ठा को देख करके, उनके समर्पण को देख करके, वो कितने समर्पित हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम भौतिक भावना से ग्रस्त रहेंगे, हम समर्पण हम लोग में आ ही नहीं सकता है। और समर्पण आएगा, कभी कभी हम देखते हैं समर्पित होते हैं, लेकिन भक्ति भावना को पूरा करने के लिए हम समर्पित होते हैं। तो यदि भक्ति भावना जिसमें नहीं है वो समर्पित है, तो उच्च कोटि का भक्त है, उच्च कोटि का भक्त है। तो कभी कभी हम देखते हैं हमारे हृदय में कितनी भौतिक भावनाएं भरी हुई हैं, तो हम भक्ति करते हैं उस भावना को पूरा करने के लिए। अब भगवान बहुत दयालु हैं, तो भक्ति तो कल्प वृक्ष के समान है, हर प्रकार की भावना ठीक है, अगर आपको जो चाहिए मिल जाता है, लेकिन जो मुख्य है कृष्ण प्रेम है, वो भगवान जल्दी देते नहीं हैं, आसान नहीं है, हर चीज दे देते हैं, लेकिन जो अपनी भक्ति का जो रिजल्ट है, भक्ति है, वो जल्दी नहीं देते हैं। उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए बहुत समर्पण चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक हम भक्ति करते हैं, बहुत वर्षणों का आदर चाहिए, वर्षणों की कृपा चाहिए, अपने परिश्रम से बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अपना परिश्रम सफल तभी होता है जब साथ में वर्षणों की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। इस प्रकार से जो भक्ति बहुत कठिन है, जो भक्ति भगवान को नचा देती है, भगवान को बस में कर लेती है, भगवान को सारथी बना देती है, भगवान को झूठा खिला देती है, ऐसी भक्ति को हम ग्रेजुअली धीरे धीरे हम प्राप्त कर लेते हैं, धीरे धीरे, ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। प्रोसेस भक्तिसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर ढंग से। और यही प्रोसेस का बहुत सुंदर ढंग से श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया और सिखाया। और हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो किसको प्रचार किए, हिप्पियों को किए। और प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार जितने ही भक्त प्रचार कर रहे हैं, वो थोड़ी सभी नहीं खोज रहे हैं, कोई कुलीन ब्राह्मण परिवार का है, कहाँ का है, नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि साधारण भक्त के प्रभुपाद जी की जो पुस्तकों का वितरण करते हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, वो एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति को भी भक्ति दे देते हैं। और वो आप देखते हैं उनका जीवन बदलता है, कैसे, क्योंकि भगवान का शब्द ब्रह्म है, प्रभुपाद जी का शब्द है, और प्रभुपाद जी का शब्द जब हम हृदय में हमारे प्रवेश करता है तो यह शब्द हमारे हृदय में क्रांति पैदा कर देता है, हलचल मच जाती है। आप नए भक्तों जो जो नए नए आप सभी लोग जब प्रारंभ किए होंगे भक्ति, आप देखते होंगे कि ये ज्ञान जो है हलचल मचा देता है। हम सोचने लगते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना भ्रमित थे इस संसार में, कितने भ्रमित थे हम, अपना यह सोशल समाज की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, मानव की सेवा ही सब कुछ समझ रहे थे। लेकिन ये प्रभुपाद जी के शब्दों को जब हम लोगों ने सुना, हमारे हृदय में प्रवेश किया, तब पता चला ओ कितने हम भ्रमित थे, कितने भ्रमित थे। ये हैं आचार्यों के शब्द, ये भगवान के शब्द। जब भगवान के शब्द दिव्य ध्वनि यथा रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो एक ही चीज कार्य करती है, हम तब हम वही कार्य है, हम भौतिक जगत से को देखते हैं, उस आंख से देखते हैं। उसी भक्त ही भौतिक जगत का अच्छा से दर्शन करते हैं, वही देख सकते हैं कितना क्षणिक है, कितना दुखमय है। जिसने भक्ति का स्वाद नहीं लिया है वो तो यही सोचेगा कि यही सब कुछ है, सब कुछ। यहां तक कि जो यज्ञ दान व्रत अगर उसमें न उत्पादित यतरतिम श्रम एव ही केवलम, न उत्पादित यतरतिम श्रम एव ही केवलम, यो परिश्रम मात्र है। यदि भगवान के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न कराता है तो हर भक्त को आसक्ति इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि कम से कम साधनों गई अनासंग गई अलाभ्या सूत्र चुसुचिरादपि। कहते हैं आप कितना साधन करेंगे, साधन साधनों का समूह यदि आप रुचि के साथ आसक्ति के साथ स्तर पे नहीं है तो भक्ति मिलना कोसों दूर है, माइलों दूर है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने वर्णन कर रहा था कि ये आज रूप गोस्वामी ही बताते हैं कैसे रुचि और आसक्ति तक आप पहुंच सकते हैं। तो जो बहुत सावधान भक्त हैं, जिसकी मति स्थिर हो गई है, वो कभी भी आचार्यों के रास्ते को छोड़ते नहीं है। उनमें उनकी अटूट श्रद्धा बढ़ती जाती है, अटूट श्रद्धा बढ़ जाती है और यही श्रद्धा उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान कर देती है। हरे कृष्ण। सभी 5 मिनट समय है, किसी भक्त का कोई भक्त का अपना शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है किसी का, या कोई टीका टिप्पणी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ पूछिए, पूछिए। हाँ बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का प्रश्न है कि मैंने वर्णन किया कि जब हम भौतिक भावना से मुक्त होते हैं तो प्रेममय भक्ति प्रारंभ होती है। लेकिन हम कहते हैं हम लोग भक्ति करते हैं भौतिकता को प्राप्त करने के लिए, तो प्रारंभिक भक्ति है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति का माइंड भौतिक ही वस्तु चाहिए, तो अगर उसके लिए भी अगर दवा लिया जाए तो अच्छी बात है। तो दवा लेंगे तो आपका मर्ज ठीक होगा, तो आपको पता चलेगा ये भौतिक जिसके लिए भक्ति कर रहे थे वो तो बहुत तीखा है, वो बहुत तीखा है। श्रीमद भागवत शास्त्रों में वर्णन है ध्रुव महाराज के चरित्र में। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं इतना मूर्ख था, अस्थाना विलासी तपसो कृतो अहम, मैं राजा बनने के लिए भक्ति किया, बहुत संपन्न होने के लिए तपस्या किया, और आपकी भक्ति सुर मुनि दुर्लभ है, देवताओं के लिए और असुरों के लिए दुर्भर है। लेकिन स्वामी कृता, अभी आज मुझे पता चल गया आपके दर्शन के बाद, ये पहले का धन था राजपाट, वो कांच के टुकड़े के समान है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, इन किन प्रकार ने मना कृष्णियों से किसी न किसी ढंग से, चाहे धन के लिए, दौलत के लिए, किसी के लिए आप आए, लेकिन जब दवा लेंगे तो आपका मर्ज दूर होगा, तो पता चलेगा कि हम कहाँ भटक रहे थे। आप समझ गए। तो दवा लेना चाहिए, बीमार व्यक्ति ही दवा लेता है। तो हम ये बीमारी में भी काम आता है, बीमारी दूर होने के बाद भी ये दवा दूसरा आनंद देती है। हरे कृष्ण महामंत्र बीमारी को ठीक करती है, और बीमारी के जब ठीक हो जाते हैं तो अमृतमय रस प्रदान करती है। ठीक है प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न है? तो प्रभु जी बहुत, आप भक्त समय सिंधु आप पढ़िए। तो बस ठीक है, वही जप करिए। ठीक, हर नाम तो फल ही है, शास्त्र का मत है। ठीक ना, बहुत अच्छी बात ना। ठीक है, हर नाम हमारे आचार्य गण बताते हैं, जब हर नाम लेते हैं, जैसे बीज या बीज भक्ति का बोया जाता है, हर नाम के द्वारा उसका सिंचन होता है। आप पहले बात को समझिए, जब पानी डालते हैं तो उसमें अनवांटेड अनर्थ दूसरे बीज भी उगते हैं, दूसरे बीज भी उगते हैं, तो उस प्लांट को, लता को निकालना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, उस लता को निकालना पड़ता है। हर नाम आप लेंगे तो दूसरे बीज भी बढ़ेंगे, दूसरी लताओं में, लता के साथ दूसरी लता बढ़ेगी। तो उसके लिए साधु संघ है, ये सब वर्णन कर रहा था, उसके लिए उसको साधु संघ करेंगे तो हम निकाल देंगे, पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने बताया कि रोड तो 60 की स्पीड में चलते हैं, 100 की स्पीड में, मेन रोड पे भी चल सकते हैं, साइड में भी चलते हैं, तो लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हर नाम का फल है, फिर भी लगता है हर नाम है, लेकिन पूर्ण फल नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरे लताओं में हम फंस गए हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये अनर्थ यही है, इसलिए हमारा साधु संग में जब हम हर नाम करते हैं तो लता को पानी मिलता है, दूसरी लताएं नष्ट हो जाती हैं। ये बहुत जरूरी है। ओके, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर परमानंद हरे।